पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। इस समय सार परमागम इसकी आत्मख्याति टीका और उसका आत्मख्याति टीका और समय सार की गाथाओं का टीका में समागत कलशों पर ये वास्तव में पूरी टीका है। जैसे न चारिका जो महत्वपूर्ण अंश है उसको ही इसमें लिया गया है, पूरी जैसे न चार्य की टीका को इसमें नहीं लिया गया है। आचार्य अमृतचंद्र इस समय सार के लिए इस ग्रंथ की टीका समाप्त करते समय दो महान विशेषण देते हैं। एक कहते हैं इदम एकम जगत चक्षु रक्षयम, यह जगत का बेजोड़ चक्षु है, ये दुनिया को देखने का एकमात्र एक चक्षु है, जगत में ऐसा कोई दूसरा चक्षु नहीं है। यानी आत्मा का स्वरूप जानना हो और जगत का भी स्वरूप जानना हो तो इस समय सार के अध्ययन से वो हमारे ख्याल में आएगा। और यहाँ तक लिखा न खलु समय साराद उत्तरम अस्ति, कि समय सार से महान ग्रंथ इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। दूसरा अर्थ भी हो सकता है, समय सार माने अपना शुद्धात्मा, उससे महान इस जगत में और कोई नहीं है। इस कारण लोग जैन दर्शन को कभी स्वार्थी धर्म भी कहते हैं। और यदि स्वार्थ का सही अर्थ समझा जाए, स्वार्थ माने परमार्थ, अपने आत्मा का कल्याण, कोई किसी दूसरे के आत्मा का कल्याण तो कर ही नहीं सकता है, तो अपना कल्याण हुआ तो वो स्वार्थ ही हुआ ना। इस जगत का जो स्वार्थ है, जो बदनाम है, बदनाम शब्द है, उस शब्द से जो बात कही जाती है वो वास्तव में अच्छी नहीं है, ख्याल है ना, स्वार्थी होना जगत में। लेकिन उस वो अर्थ यहां नहीं है। स्व माने अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना, उसका नाम है स्वार्थी होना। मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि भगवान महावीर जब दीक्षा लेके जंगल में गए तो वो 12 वर्ष 12.5 वर्ष के लिए मौन ही रहे। अब ये कहा जाता है कि वहां पहले अश्वमेघ यज्ञ होने लग गए थे, यहां तक कि नरमेघ यज्ञ होने लग गए थे, हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा था, तो उन्हें पशुओं को और मनुष्यों पर दया करके महावीर ने दीक्षा ली। कहा जाता है और अच्छा भी लगता है कि हमारे भगवान कितने दयावान थे। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से विचार करें बहन कुमार जी, तो क्या उनने दूसरों के लिए दीक्षा ली थी? क्या दूसरों के लिए दीक्षा ली जा सकती है? क्या दूसरों के लिए दीक्षा ली जानी चाहिए? क्या आत्मकल्याण के लिए ली जानी चाहिए? अरे वे राजा थे, राजकुमार थे, और उस गणराज्य के सबसे बड़े सम्राट चेतक उनके नाना थे, तो उनको नरमेघ यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ पहले तो अपनी राजसत्ता के आधार पर एक ऑर्डर निकलवा देते और पुलिस की कड़ी व्यवस्था करवा देते तो तत्काल रुक जाते कि नहीं रुक जाते? अभी 12 वर्ष को आत्मा के ध्यान में चले गए। अब 12 वर्ष बाद क्या करेंगे उसकी बात बाद में करेंगे। अब 12 वर्ष में कितने आदमी और कितने पशु हवन में होम दिए गए होंगे, कैसा जगत के ने उन्हें करुणा से प्रभावित होकर और उन्हें बचाने के लिए दीक्षा ली, तो एक कैसा बचाने का तरीका है बोलिए। ये एक्शन जो उनका हुआ कि दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक मौन एकदम एकांत ध्यान में रहे, ये बिल्कुल इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि जो ये कहा जाता है कि उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए दीक्षा ली। उन्हें आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली और वो उन्होंने इस भव में किया। इसलिए मैं कहता हूं کہ وہ بڑے سوارتھی تھے اور ہمیں بھی سوارتھی ہونا چاہیے، لیکن وہ سوارتھی اپنے آتما کے کلیان کی بات ہے. پھر ان کی دیو دھنی میں بہت اچھا تتو گیان نکلا، اس میں اہنسا کی بات بھی نکلی اور جگت پر اس کا پربھاؤ بھی پڑا، اور دھیرے دھیرے وہ چیز بھی سماپت ہوئی، ہنسا کا تانڈو نرتیہ بھی سماپت ہوا، اشٹمیگ یگ بھی سماپت ہوئے. یہ بات تو ستیہ ہے کہ ان کے دیو دھنی کے مادھیم سے یہ سب ہوا، لیکن انہوں نے اس کے لیے دیکھا لی اور اس کے لیے کچھ کیا یہ نہیں. انہوں نے تو اس بھو جیووں کو آتما کا کلیان ان کا کیسے ہو کہ پانچ اندری کے بسموں میں سے کیسے نکلیں، یہ جگت کی جھنجٹوں سے کیسے نکلیں، یہ راگ دیش سے کیسے پار ہوں، اس کے لیے اپدیش دیا کہ دوسروں کو مارو مت بچاؤ، اس کے لیے اپدیش نہیں دیا. تو بندہ ادھیکار میں پورا اس سمے سال میں کم سے کم 25 گاتھائیں ہوں گی، جس میں ڈنکے کی چوٹ یہ کہا ہے کہ نج آیو چھے سے مرن ہو، یہ بات جن بر نے کہی، تو بچا کیسے سکے گا جب آیو دے سکتے نہیں. نج آیو چھے سے مرن ہو، یہ بات جنور نے کہی، تم مار کیسے سکو گے جب آیو ہر سکتے نہیں. اس میں میرے 12 ویاخان ہیں، ابھی دیولالی میں ہوئے تھے شبر میں، کئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی، یہی سارا پرکرن ہے اس میں، اس کے کیسٹ بھی یہاں اپلبدھ ہیں، بہت مارنے بہت اچھے ہیں. امریکہ میں تو میں نے سارے گاؤں گاؤں میں وہ کروا دی اس کی کاپیاں، کم سے کم 500 کاپیاں وہاں ہو کے چلی گئی ہوں گی. کلکتے میں بھی ابھی 2 مہینہ پہلے رہسپون چٹھی پہ ہوئے تھے 8 ویاخان، اس کی سیڑھی بھی ہوگی. یہ بہت مارمک وشے ہیں، یہ سادھارن نہیں ہے. مہاویر کہتے تم کسی کو مار نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے، تو تم کسی کو مارو مت اور ایسا اپدیش دیں گے. یہ تو ایسا کہتے ہیں اسی پرتن سار میں، مارو نہ مارو جیب کو بند ادبسان سے، یہ بند کا سنچھیپ ہے، تم جان لو پرمارتھ سے. میں نے ان نے جو اپدیش دیا، جو ان کی دیوانی کا آیا اور ہمارے پاس جو شاید تو اپلبدھ ہے، مجھے کسی کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. یہ تو گردیو جی کے پرتاپ سے اتنا بڑھیا کال پکا ہے کہ اس سمے بھی ایسے کھچاکھچ ہال بھرا رہے 1200-1500 آدمی، اور 10 دن تک لگاتار اس تتو گیان کو سننے کے لیے، اور کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے. آپ سب جانتے نہیں ہمارے پاس کتنی جگہ ہے، 100-200 آدمی مشکل سے سمائے، لیکن یہ تو آکاش درو کی کرپا ہے کہ آپ سب لوگ اتنے یہاں پر ٹھہرے ہیں. باہر ہم بہت کوشش کرتے ہیں، سب سے مکان لیتے ہیں، مہن بھائی کی کرپا سے سب کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی جانا ہی نہیں چاہتا. جو جگہ لیتے ہیں وہ خالی پڑی رہتی ہے، اس ہال میں لیٹے رہتے ہیں، رات میں بھی یہی سو جاتے ہیں. صبح 4 بجے سے یہاں پر وہ شروع ہو جاتا ہے، بھکتامبر کا پاٹھ، پھر گردیو کا پرچن. ابھی بیچارے سو بھی نہیں پاتے ہیں ڈھنگ سے کیوں، اور شام کے 10-11 بجے تک، 11 بجے تک کا تو کارکرم سنائی دیا آپ کو. ایک ادبھت بات نہیں ہے یہ اپنے آپ میں مہن کمار جی؟ پہلے کے زمانوں میں ناٹک آدھی کارکرم اس لیے کیے جاتے تھے کہ بھیڑ اکٹھی ہو جائے، نہیں تو پنڈت جی کے پرچن سنے گا کون، تو ناٹک کی بھیڑ اکٹھی کر کے اور ناٹک کے بیچ میں پنڈت جی کا پرچن کرا دے، زبردستی ان کے گلے میں پلا دے. کیا کوئی مہا سمتی وغیرہ کا ادھیوشن وغیرہ کرنا ہو، آج الٹا ہو گیا ہے معاملہ. अब वही पंडित जिनके लिए भीड़ जुड़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे, अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुड़ाने के लिए उन पंडितों के प्रवचन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो कोई अद्भुत काम हुआ है पूज्य गुरुदेव की प्रताप से, क्योंकि पंचम काल का स्वरूप नहीं है, उसमें चलता ना गड़बड़, उसके जो ये उद्धार का काल है, ये बढ़ोतरी का काल है, नैमित्य का नहीं। ऐसा नियम है कि 500 वर्ष तक बढ़ोतरी होती है और 500 वर्ष से घटोतरी, फिर 500 वर्ष महावीर के बाद है ना, तो ये ऐसा काल है। तो इसलिए कहते हैं कि इस समय सार से महान कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें अहिंसा के बारे में क्या लिखा है, देखिए इसकी महानता किस बात से है। देखिए तुम दूसरों को मारो या दूसरों को बचाओ, ये तुम दूसरे में कुछ करने वाले होते कौन हो, और ये बचाने वाली बात कितनी सत्य है। मैंने बाबू सुनो, इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और उन्हें वहां से मार भगाया, सारा कुवैत खाली हो गया, बाहर मारे मारे फिरे जनता। तो अमेरिका ने कहा कि आप कहो तो हम आपकी रक्षा के लिए आ सकते हैं। अब मारने वाले और बचाने वालों की कहानी थोड़ी समझना, कि सब आप आ जाओ बचा लो हमारे लिए, तो वे आ गए और उन्होंने बचा लिया। फिर दोबारा भी अपने घर में आ गए, फूल के कुप्पा हो गए, फिर कहा कि आप पधारो, कि भाई अभी तो हमने तुम्हें बचा लिया और हमें यहां से जाएंगे तो ये तुम्हारा फिर आक्रमण करके तुम्हें हड़प लेगा तो क्या होगा, अब तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमें यहीं रहना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। तो बेजम गए, क्या फर्क पड़ा, इराक के गुलाम होते या अमेरिका के गुलाम हुए, क्यों? फिर आगे सुनो कि साहब अब हमारी रक्षा कर रहे हैं तो बड़ी कृपा है, कि देखो एक बात है कि ये सैनिक तुम्हारी रक्षा में रहेंगे तो इनकी जो तनख्वाहें पहले से तय हैं अमेरिका में, वो तनख्वाहें सब तुम्हें देनी पड़ेंगी। अब बोली हिंदुस्तान में भी वो तनख्वाहें देनी पड़े डॉलरों में, $10,000, क्यों 3-3-4 लाख रूपये महीना, तो क्यों एक दिन में ही निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो क्या करें, तुम्हारी रक्षा के लिए दे रहे तो उनकी तुम में खर्चा नहीं दोगे तो कौन देगा। अच्छा लेकिन ये तो बताओ कि जो फिर हमारी आज्ञा में रहेंगे तुम्हारे सैनिक, हमारे सैनिक तुम्हारी आज्ञा में कैसे रहेंगे, आज्ञा हम देंगे और ऐसी भी हो सकती है वो कि तुम कुछ उद्यम करो तो हम ये भी आज्ञा दे सकते हैं कि तुम इनकी तबीयत ठीक कर दो। कि हमारे पास तो इतना कुछ है ही नहीं जो इतनी तीनों कम तनख्वाहें चुका सकें, कि तुम चिंता मत करो हम तुम्हारा तेल निकाल लेंगे। तो तेल निकालने का अर्थ तो आप समझते ही हिंदी का फ्रेज है कि तुम्हें हम निचोड़ देंगे। भाग्य की बात है कि उनके पास तो तेल है, ऐसे हमारे साथ ऐसा होता कोई चाइना फाइना हम पे आक्रमण करता, हमको अमेरिका आगे बचाता, फिर हमारे बचाने के लिए यहीं जम जाता, फिर हमसे अमेरिकी डॉलरों में तनख्वाहें देता, तो हमने क्या निचोड़ता, तेल ही नहीं है निचोड़ता। तो अब सुनिए, रक्षा करने वाला ज्यादा खतरनाक है कि मारने वाला। अब एक खतरनाक बात कहता हूं, शायद बहुत मुश्किल से आपके गले उतरेगी लेकिन मैं उतार के रहूंगा। क्यों जी, कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया था और यदि वो कुवैत को अपने में मिला लेता क्या करता, आक्रमण करके क्या करता, और कितना बड़ा इराक हो जाता था, वो यही कहता था ना हमारा पुराना हिस्सा है ये पहले अलग हो गया है हम एक हत्या कर रहे हैं, तो कुवैत वाले प्रबंध हो जाते। मैं पूछता हूं आपसे, कुवैत वालों को वोटिंग का अधिकार होता कि नहीं होता, वो तो एक प्रधान बन जाता है वहां का, तो वहां से कोई आका आदमी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता था क्या, नहीं प्रधानमंत्री बन सकता था क्या, नहीं। वो तो जैसे बाकी इराकी नागरिक हैं ऐसे ही वहां का नागरिक हो जाता। अब पराधीनता कहां रही? यदि ऐसी पराधीनता है तो पंजाब भी हमारा गुलाम है, क्यों कश्मीर भी गुलाम है, राजस्थान भी गुलाम है, हम आजाद है के गुलाम है, हमें पूरा राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति बनने का अधिकार है ना, तो उन्हें भी मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन अमेरिका वाले के हैं तो अमेरिका की राष्ट्रपति पद में चुनाव में जो खड़े हो सकते हैं, वहां जो वोट देंगे इराक वाले कुवैत वाले जाके, क्यों इन्हें वोटिंग पावर है? क्यों? तो बड़ी बड़ी गुलामी कौन है? अरे ये तो गुलामी ही नहीं है, वो तो आजाद हो गए, हमने संगठित हो गए, एक हो गए, वो तो आजादी का एक स्वरूप है समझ लीजिए, पर ये तो पक्की गुलामी की बात है। अब बताइए मारने वाला जो इराक है उसके कब्जे में रहना ये ठीक है कि बचाने वाले अमेरिका के कब्जे में रहना ये ठीक है? तो बताओ बताओ, मारने वाला अच्छा कि बचाने वाला? ये तो दो ही अच्छे नहीं। लेकिन तुलना करना हो तो हम समझते हैं मारने का भाव तो बहुत बुरा है और बचाने का भाव बहुत अच्छा है, ख्याल में आई नहीं? आचार्य कहते हैं कि ये दोनों भाव पर में हस्तक्षेप के भाव हैं, दूसरे में हस्तक्षेप कर रहे हैं हम, कह दूं समझे ना, हमें ना हमें ना तुम बचाओ ना तुम हमें मारो, बस खत्म, हमारा हमारा बहुत बड़ा उपकार करोगे, और हम तो या किसी को मारेंगे या किसी को बचाएंगे, तो हमारी बात नहीं मानेंगे तो मारेंगे, हमारी हमारी सेवा में रहेगा तो बचाएंगे, ऐसे छोटे छोटे भगवान सब बन गए, और भगवानों की भी यही हालत है, जब जब भीड़ पड़े भक्तों पर तो वहां के दुष्टों को राक्षसों को मार पीट के छाती पे पैर रखकर चाचा करके क्यों भगा दिया और अपने भक्तों की रक्षा कर ली। वो तो हम उनके भक्त भगत भी हमें ही करेंगे, जो हमारे अनुकूल रहेगा उसकी रक्षा करेंगे, जो प्रतिकूल रहेगा उसे मार भगाएंगे, तो अब रहा क्या फर्क दोनों दोनों में फर्क क्या रहा? बढ़िया, इसलिए कहते हैं भाई कि ये तो दोनों चीजें राग देश की जनक हैं, ये भगवान महावीर की दिव्यनी में आई थी, अब क्या करें? भरी सभा में चिल्ला चिल्ला के कह रहे, देने के अखबारों में लिख रहे, भगवान महावीर ने इसका किया, ये किया, वो किया, मैं कहते कौन से शास्त्र में लिखा बताओ तो, लिखा है ना लिव एंड लेट लिव, क्या है भैया? भगवान महावीर की अंग्रेजी में भी बोले थे जियो, खुद जियो और जीने दो समाने में सभी को, क्यों ये भगवान महावीर? ये तो बाइबिल का बात है भले आदमी, अरे तुमने राम महावीर के नाम पे मर दिया, बाइबिल में लिखा है भगवान महावीर अगले सब जीते हैं, कौन होते हैं हम उन्हें जीने दें? कौन होते हैं हम उन्हें जीने देने वाले और कौन होते हैं हम मारने वाले? क्यों जब उनके आयु का कर्म खत्म हो जाएगा तो वे मरेंगे, तो हमारे जीने दोष से क्या होता है बोलो? हाँ, और आयु कर्म रहेगा तो हमारे मारने के भाव से भी क्या होता है? ये तो उसी आजादी में दखल है। ये कहाँ महावीर का वाक्य है जो महावीर के वाक्य के नाम पर हमने सब जगह लिखवा दिया है, जिन्हें और जी दो, जियो और जीने दो, महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो। तो ये समय सार सब शास्त्रों में महान है, तो इसकी महानता इन बातों में है। आगे से गहराई से जाकर देखें तो एक एक बात, ये समय सार का समापन करते हुए आचार्य कुंड कुंड स्पष्ट शब्दों में स्वयं लिखते हैं कि जो व्यक्ति शब्द से और अर्थ से इसको पढ़ेगा, उसका भाव समझेगा, वो निश्चित रूप से उत्तम सुख को प्राप्त करेगा, ये उनकी गारंटी है। ये समय सार के सार समय सार को अर्थ से और भाव से दोनों माने, अर्थ माने वो पदार्थ, ये पदार्थ क्या है, और भाव माने इसका कार्य क्या है। जैसे कि ये अर्थ और भाव का मैं थोड़ा अर्थ समझाऊं कि हमें एक गिलास पानी लाना, اس بچے کو جسے کہا گیا ہے اس گلاس نامک پدارتھ سے اور پانی نامک پدارتھ سے بھی پرچت ہونا چاہیے, ہے نا. اور ایک گلاس بھاو سے بھی پرچت ہونا چاہیے اور اس وستو سے بھی کہ اس کا کیا ہے, کہ ایک گلاس پانی جو منگایا ہے تو انہیں پیاس لگی ہے اور پانی پینا ہے بجھانا ہے, تو یہ اس کا بھاو ہے. ایک گلاس پانی کائے کے لیے منگایا. اب مان لو گلاس نہیں ہے تو کیا کریں, کہ صاحب گلاس نہیں ہے پانی نہیں آ سکتا. ارے بھائی سمجھدار ہو بھاو سمجھتا ہوگا تو کٹورے میں لے آئے, گلاس سے کیا لینا دینا, کہ اس آکار سے تھوڑی کچھ لینا دینا ہے. کیوں ایسے آکار والے برتن میں لے آئے گا اور پانی کے پینے کے بھاو کا کام ہو جائے گا کہ نہیں. تو اکیلے وستو کو بس ایک گلاس ایک گلاس, جب تک وہ ایسا آکار کا چیز نہیں آئے گی تو بس ہم کیا کریں, ہم گلاس ہے ہی نہیں, اب گلاس ہے ہی نہیں, اب گلاس ہے ہی نہیں, کیا کریں. تو جو بھاو کو نہیں پہچانے گا وہ اس کی دردشا یہ ہوگی, اور جو ارتھ وستو کو ہی نہیں پہچانے گا کہ پانی کیا ہے اور گلاس کیا ہے, کیا لے جانا ہے کیا ہے, تو وستو کو بھی پہچاننا چاہیے, اس کا نام ہے ارتھ, اور اس کو پریوجن کو اس کے بھاو کو یہ پہچاننا, اس کا ارتھ ہے بھاو. تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے پانی, پانی نام کا ایک شبد ہے, پانی نام کا ایک پدارتھ ہے, اور پانی کو جاننے والا ایک گیان ہے, اس کا نام بھی پانی ہے. بولتے نا پانی کا گیان, تینوں کو جاننا چاہیے. پانی نامک پدارتھ کو نہیں جانیں گے تو کام نہیں چلے گا, اور پانی نامک شبد کو نہیں پہچانیں گے تو, اب ہم نے پانی بولا اور تم شبد کو نہیں پہچانا تو پھر کیا لاؤ گے. بولیے پدارتھ تو ہے آپ جانتے ہیں لیکن پانی نامک شبد کو نہیں جانتے ہیں, اور پانی نامک شبد کا اور پدارتھ کا دونوں کا گیان نہیں ہو تو کیا ہوگا. تین چیزیں ضروری ہیں نا, تو سمے نامک شبد ہے, سمے نامک پدارتھ ہے, اور سمے نامک کو جاننے والا ایک گیان ہے, اس کا نام بھی سمے ہے. گیان سمے, شبد سمے, اور ارتھ سمے, تین طرح کے سمے ہوتے ہیں. یہ سمے سار کا سمے چل رہا ہے, تین طرح کے سمے ہوتے ہیں, سمے نامک شبد جو سمے نامک پدارتھ کا واچک ہے, سمے نامک ارتھ جو سمے نامک شبد کے دوارا کہا جاتا ہے, اور سمے نامک گیان جس نے اس سمے نامک شبد کو اور ارتھ کو جانا ہے اور ان کے سمبند کو جانا ہے وہ سمے نامک گیان. کیا اس کو بتانے والا یہ سمے سار نامک گرنتھ ہے نا. وہ رجنی چھاپا کے منگلا سار پدارتھ آتما سکل پدارتھ جان, سب پدارتھوں میں سار بھوت پدارتھ یہ بھگوان آتما ہے. تو سمے مانے چھئی دربھ اور سار مانے آتما, اور سمے مانے آتما تو سار مانے درب کرم بھاو کرم اور نو کرم سے رہت شدھ پارنامک بھاو, ایسا ارتھ کیا جاتا ہے. تو دیکھو اب آتم چھاتی کا جو کلف ہے اب اس کی چرچا کرتے ہیں. نما سمے سارائے سوان بھوتیا چکاستے چت سوبھاوائے بھاوائے سرو بھاوانتر چھدے. اس کا ہندی پدانواد نیچے دیکھو, نج انوتی سے پرگٹ چت سوبھاو چدروپ سکل گے گائک نمو سمے سار سدروپ. یہ جو سدروپ ہے نا یہ بھاوائے کا انواد ہے, یہ جو چت سوبھاوائے ہے نا چت سوبھاوائے کا انواد ہے. تو ایسے سب سکل گے گائک تو سر بھاوانتر چھدے اس کا جو انواد ہے سمجھے نا. اور سوانبھوتیا چکاستے تو نج انوتی سے پرگٹ یہ سوانبھوتیا چکاستے کا میں نے پورا ایک ایک شبد اکثر سے اس کی بھاو اس میں بنا ہوا ہے, اور اس کا ارتھ بھی سے سرل ہے کہ نج انوتی سے پرگٹ کب ملے گا یہ بھگوان آتما, کہ آتمانوتی سے پراپت تتو میں گیان آنند سوبھاوی ہوں, چت سوبھاو وہ چیتن سوبھاوی ہے, اور سد روپ وہ وستو ہے, میں آکاش آدی کے بھانتی एक वस्तु हूं, ऐसा आता है ना। और सकल वेद जायक सारी दुनिया को जानने वाला है, ऐसा समय सार शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तो देखिए अब इसमें तीन चार विशेषण हैं, एक समय सारा है, मन समय सार, एक चित्त स्वभाव है, एक भाव है, और एक सर्वभावांतर अच्छे एक सुमानुभूतिया चकाशते। देखो आप जानते हैं नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, हमारे विद्यार्थी सब जानते हैं, सब क्या होता है नमः के योग में चतुर्थी का योग में होता है नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा, ये सब शब्द में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो ये भाव की जगह भाव क्यों नहीं लिखा, भावा क्यों लिखा, चित्त स्वभाव क्यों नहीं लिखा, चित्त स्वभाव आय क्यों लिखा, ख्याल में है ना। तो कहते हैं कि चतुर्थी का प्रयोग है, चतुर्थी विभक्ति होती है, एक रामा से रामाय, नमः के योग में चतुर्थ राम के लिए नमस्कार हो तो रामाय नमः है ना। अब भी जो ओंगरी बोलते हैं ना इसमें बहुत गड़बड़ी होती है, महावीर जिनेन्द्राय है ना, अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पांति स्वाहा आता ना, तो जिनेन्द्राय तो यहां तो नमा नहीं है, फिर क्यों आ गया है जिनेन्द्राय, तो स्वाहा सुधा इनके योग में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है, स्वाहा बोला ना अंत में, इसलिए यहां महावीर आय हो गया। अब संस्कृत जो लोग नहीं जानते वो क्या करते हैं मालूम, कि महावीर आय है तो जहां भी महावीर आय लगाना है, तो अब ये तो अकारांत शब्द है, इसमें आय लग करके चतुर्थी बनती है, लेकिन दूसरे इकारांत शब्द हो तो उसमें अलग रूप बनता है, समझिए ना। क्या मानो हरि हो तो क्या बनेगा, फिर हरे, फिर हरे बोलना पड़ेगा, फिर महावीर आय नहीं, समझिए ना। मैं तो वो सब में आय लगाते जाते हैं, उसको पता ही नहीं कि कौन सा अजंत है, हलंत है, पुलंग है, क्या स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, कौन है, वो कुछ पता नहीं है, आय लगता है अपने यहां पर, बस वर्धमान आय ना, नमः श्री वर्धमान आय बस है? क्यों अब मना भी महा, यदि हम किसी स्त्री को नमस्कार करें तो क्या करेंगे, दुर्गा मैया को नमस्कार हो तो क्या करोगे बोलो, दुर्गा माता जंतु बना दे उसे आ माता, यही जो जो भी बनेगा ना, जो भी उसमें बनेगा चतुर्थी के एक वचन में वो लगाना पड़ेगा ना, समझे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो उन्हें तो उसका तो पता नहीं कि कैसा है आए, तो इसलिए उसका ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सामान्य कि प्रयोग कैसा है। तो इन्हें तीन चीजें लगाई, भावाय चित्त स्वभावाय, दो तो ये हो गई, और तीसरी है स्वानुभूत्या चकास्ते और सर्वभावांतरच्छदे, ये दो मिलके तीसरी है। क्या मतलब इसका कि पहले वस्तु हो भावाय, कहते वो भगवान आत्मा जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं वो है, जब तक किसी चीज का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो तब तक वो कैसा है उसकी बात करने से क्या फायदा। शास्त्रों में उदाहरण आता है बंध्या सुत विवाह वर्णन भक्त, कि बांझ के बेटे की बरात का वर्णन करो, इतने इतने लोग कहते इतना बढ़िया बैंड बाजा था, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, क्यों कितना बड़ी वर्णन करो। तो वो कहते हैं पहले उस बांझ के बेटा होता है कि नहीं, पहले ये तो सिद्ध करो कि बांझ के बेटा है, तब उसकी बरात जाएगी और तब उसका वर्णन तुम कर सकते हो। अब आत्मा है यही सिद्ध नहीं है, और तुम कहे चित्त स्वभाव वाला है, आनंद का कंध है, रस का कंध है, शक्तियों का संग्रहालय, क्या मतलब है तुम्हारे इसका। पहले उसका भावाय, भावाय माने सत्ता स्वरूप, माने अस्तित्व का निश्चय करो। अपना सत्ता स्वरूप अपने एक ग्रंथ है, माने जो भगवान आत्मा का अस्तित्व कैसे है, स्वरूपास्तित्व है या सादृश अस्तित्व है। पहले हम सादृश अस्तित्व को मानते थे, स्वरूपास्तित्व पर ध्यान नहीं था, अब स्वरूप अस्तित्व को मानते हैं, साध्य अस्तित्व उड़ गया है, मुझे समझ नहीं सारी मुख्य समाज में। आपको हम कहते हैं ना आप पृथक हैं और हम पृथक हैं, ये पक्का भरोसा है ना, देह पृथक है और तुम पृथक हो, ये बात पक्की है ना 100% कि तुम देह और तुम एक भी हो किसी अपेक्षा। क्यों कह हम 40 साल से डरते डरते हो गए, देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है यही को विस्तार, हम तुम्हारे धोखे में आने वाले नहीं हैं, पक्की बात है अन्ना जी। तो तुम महासत्ता को भूल रहे हो, हम वो शरीर एक अपेक्षा एक हैं, वो अपेक्षा कौन सी है कि वो भी है और हम भी हैं, ये हैं में हम एक हैं, क्यों अस्तित्व में एक है, सत्ता उनकी भी सत्ता है और हमारी भी सत्ता है, तो हम किनसे भिन्न हैं, हम गधे के सिंह से भिन्न हैं, हम बांझ के बेटे से भिन्न हैं, क्योंकि जिसकी सत्ता नहीं है उससे हम भिन्न हैं। तो एक अपेक्षा से इसे महासत्ता बोलते हैं, सारे अनंत पदार्थ जितना लोकालोक में हैं उन सबको एक मिलाकर जो सत्ता है उसका नाम है महासत्ता। अब वो अशुद्ध महासत्ता और शुद्ध महासत्ता के भेद से दो प्रकार की होती है। अशुद्ध महासत्ता क्या है, हम सब मनुष्य हैं, ये अशुद्ध महासत्ता है, और हम सब द्रव्य हैं, ये महासत्ता है, हम सब जीव हैं, ये अशुद्ध महासत्ता है, और मैं त्रिकाली द्रुप भगवान आत्मा हूं, ये अवान्तर सत्ता है, ये स्वरूपास्तित्व है। तो जैन दर्शन में अध्यात्म में स्वरूपास्तित्व पे बहुत वजन दिया जाता है, और वेदांत वगैरह में महा सादृश अस्तित्व पे बहुत वजन दिया जाता है। वो महासत्ता का एकांत है, कौन सा, सर्वम खल मिदम ब्रह्मानेह नानास्ति कंचन आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। क्या कह रहे हैं, सारा जगत ब्रह्ममय है, सिया राम मैं सब जग जानी, ये महासत्ता का एक अंश है, समझे ना। और यदि सादृश्य अस्तित्व का एक अंश है, और हम कि हम तो बिल्कुल पृथक हैं दूसरे से, हम किसी भी अपेक्षा दूसरे के साथ हमारी एकत्व तो नहीं है, समानता नहीं है, तो वो सादृश्य स्वरूपास्तित्व का एक अंश हो जाएगा, तो हम महासत्ता को भूल गए। दोनों सत्ताओं का ज्ञान हमें होना चाहिए, वो अस्तित्व क्योंकि हम एक द्रव्य के दूसरे में जो वज्र की दीवार खड़ी है, हम बोली पहचानते हैं तो हम स्वरूप अस्तित्व को नहीं जानते, और वज्र की दीवार को तोड़ करके भी अस्तित्व दोनों में समाया हुआ है, क्यों तो हम महासत्ता को नहीं जानते। अब बिताना कि हम दो सत्ताओं में से दोनों बातें हमें एक साथ स्वीकार हैं कि नहीं है, अगर प्रयत्नसार पढ़ना, अगर सत्ता स्वरूप ग्रंथ पढ़ना। सत्ता का क्या मतलब है, तो वो कहते कैसे जाने किसकी सत्ता है, क्यों अभी किसकी सत्ता है, कांग्रेस की कि भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली में कांग्रेस की, अरे ये सत्ता नहीं, क्या अस्तित्व कि कैसे हम और तुमने एक ही कैसे है कि अस्तित्व दोनों का है, एक है कि क्या एक है, तो कहे सादृश अस्तित्व माने हम दोनों का एक सा है। कि क्या एक सा है कि आप भी उत्पाद वेद युक्त हैं और मैं भी उत्पाद वेद युक्त हैं, पर ये हमारी समानता है, ये हमारी रिश्तेदारी है, ये हमारा सूत्र है, उत्पाद वेद द्रव युक्तम सत, और तुम में भी उत्पाद वेद द्रव युक्तम सत घटता है, तो सत 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 ये सत सामान्य की अपेक्षा हम सब एक हैं, ये बात भी जैन दर्शन में उसी वजन के साथ कही है। पंचाध्यायी में सत्ता का स्वरूप कितना विस्तार से बताया है। एक मुमुक्षु में ये भूल एक हो रही है, वो महासत्ता के अस्तित्व को उनके ख्याल में नहीं है बिल्कुल, अरे अटपति हमें ऐसा स्वरूप नहीं बताऊं मैं, अटपत बहुत अटपटा रहे, कैसे पंडित आ गया, कहां आ गया, अभी उत्तम सिंह जी बता रहे थे ना आपको कि भाई अभी तो भूल ही गए आप, इसमें क्या लिखा है, ये जो द्रव्य परिणामी है क्या अपरिणामी, बोलो अभी परिणामी कर दो, तो यहां से वहां तक जाने में कितने डंडे पड़ेंगे तो पता चल जाएगा, वो अपने भाषाई के डंडे है ना, कहीं कहां वाला आ गया, अपने कहां वाला आ गया, कहां वाला आ गया, क्या फिर उनको परिणाम ही बताता है। अब सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार की पहली गाथा में द्रव्य को परिणामी सिद्ध किया है, बोलो अपरिणामी भी है घबरा में नहीं, लेकिन एक पक्ष भी समय सार में ही है, समय सार में नहीं होता तो हम मानने को तैयार नहीं थे कि द्रव्य भी परिणामी होता है। लखा नाटक समय सार का छंद बोलता हूं जो आपको बल का समझ में आएगा, करता परिणामी द्रव्य क्रिया रूप परिणाम है ना, कर्म रूप परिणाम क्रिया पर्याय की फिरने एक वस्तु त्रय नाम है ना, कर्ता परिणामी द्रव्य क्यों किसका, या परिणमति सा कर्ता, जो जिस रूप परिणमित होता है वो उसका कर्ता है। आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता है तो आत्मा ज्ञान का कर्ता है, और आत्मा जिस अपेक्षा से राग रूप परिणमित होता है तो राग का करता है ना। अब किस अवस्था में, ज्ञान अवस्था में या ज्ञान अवस्था में, वो डिटेल की बात है। वो जिस रूप परिणमित हुआ ना और स्वतंत्र करता, स्वतंत्र रूप से परिणमित हो, किसी के जबरदस्ती नहीं, बलात् नहीं, तो इसीलिए तो हमने वो रास्ता निकाला कि कर्म के उदय से, कर्म की बलजोरी से राग रूप परिणमित हुआ, इसलिए राग मेरा परिणमन नहीं है। ये जो हमने निकाला है ना वो स्वतंत्र कर्ता वाली परिभाषा में से निकाला है। उत्तम जी क्या, अब जो थोड़ा न्याय व्याकरण पढ़े हैं उनको हम एक सेकंड में समझा सकते हैं, वही बात जो नहीं पढ़े हैं उनके जिंदगी भर में हमें समझाना मुश्किल है, क्योंकि वो कोई नियम नहीं आता। या स्वतंत्र कर्ता, ये सब सूत्र हैं व्याकरण के, कर्ता परिणामी द्रव्य सूत्र हैं, समय सार के सूत्र हैं, या परिणमति सा कर्ता। तो हम क्या समझते हैं कि परिणमति माने जो होना है उसमें फेरफार करने का नाम हम परिणाम कर्ता होना मानते हैं। उत्तम जी ने कितने बढ़िया तर्क दिया कि आप अपनी पर्याय के कर्ता तो हो, अच्छा आप बन जाओगे हमें नहीं करने, सावला जी हमें नहीं करने, रुको पर्याय से रहे हो जाएगा, फिर हमें नहीं जानने, हम तो पर को जानेंगे नहीं, है तुम्हारी हिम्मत कर लो नहीं जाना, क्यों बोलो आप मुझे, हम उसके कर्ता नहीं बनेंगे। तो तुम कह दो कि हम कर्ता नहीं है, हम बने चाहे नहीं बनो, लेकिन तुम उस रूप होगे और होगे, वो तो होने ही वाला है। तुम ये कहोगे हम करा तो नहीं कर, तुम्हें काय के कर्ता है, अब समझिए ना, एक समय जी में वो द्रव्य परिणमित हुए बिना नहीं रहेगा है? तुम बेहोश पड़े हो तब भी परिणमित आगे नहीं, तब भी परिणमन हो रहा उसमें क्या नहीं, ऑपरेशन में हमको बहुत इंजेक्शन लगा लगू के ऐसा बेहोश कर दिया गया ना, दस दस दिन तक होश में नहीं आए तो परिणमन रुक गया, क्योंकि हम तो करने की हालत में ही नहीं थे। बोलो तो किसी द्रव्य का परिणमन एक समय को रुक नहीं सकता है, तो किसी के अधीन वो कहा रहा, तुम रोक दो हमारा परिणमन, हम रोक देते तुम्हारा परिणमन, क्यों कल तक आप 70 वर्ष और एक दिन, एक माह और एक दिन के थे, और आज 70 वर्ष एक माह और दो दिन के हो गए, बदल लेते, कौन नहीं चाहता, सब बदलना चाहते हैं, शारदा जी का बस चलता तो अभी तक 25 वर्ष के ही बने रहते। महिलाओं में तो खास होता है, इस साल पूछे तो 25 वर्ष, अगले साल पूछे तो 25 वर्ष, तीसरे साल पूछे तो 25 वर्ष, उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। कभी कभी बोलने लगती है जोर से, माथे पे बाल सफेद हो जाते हैं, तो नाई के यहाँ जाकर काला मुंह करा करके सर 25 वर्ष के बन जाते हैं, क्या कहे मौन धो कराते हैं, बाल कराते हैं, तो मैं तो इस पूरे को ही मौन समझता हूँ। अरे जितना जबरदस्त ये है कि द्रव्य अपरिणामी है, उतने ही जबरदस्त बात यह है कि द्रव्य परिणामी है, अपरिणामी और परिणामी दोनों द्रव्य में से ही हैं, और सभी द्रव्य परिणामी और अपरिणामी हैं, इसलिए हम एक महासत्ता के अंतर्गत हैं, हमारा स्वरूप अस्तित्व भी है, महासत्ता भी है। क्या गजब है, मैं भारतीय भी हूं और मैं राजस्थानी भी हूं और मैं जयपुरिया भी हूं, इन तीनों में कहां झगड़ा है, बोलो मुझे महेंद्र भाई। ہاں یہ میں کہوں گا میں مدھیہ پردیشی بھی ہوں اور راجستھانی ہوں تو جھگڑا ہو جائے گا, میں پاکستانی ہوں اور ہندوستانی ہوں تو جھگڑا ہو جائے گا. ایک پرانت میں اور دیش میں تو میں اپنے کو بھارت واسی بھی مانوں اور راجستھان واسی بھی مانوں اور جے پور واسی مانوں, اس میں کہاں دقت ہے کہ دو دو جگہ کے واسی کیسے ہو سکتے ہو؟ کہ دو جگہ بسنا ہی نہیں ہے کیا؟ بسنا تو ایک ہی جگہ ہے اور اسی کو تین طریقے سے دیکھنا, پرانت کی اپیکشا راجستھانی ہوں, ننگر کی اپیکشا جے پوریا ہوں, اور دیش کی اپیکشا بھارت واسی ہوں. کیوں؟ اور اب آپ اور ذرا بتاؤں, اور اب سدھانت کی اپیکشا سوندریا کتنی اپیکشائیں لگ سکتی ہیں, اور وہ سب میں ایک ساتھ ہو سکتا ہوں کہ نہیں؟ وہ سب چیزیں میں ایک ساتھ ہو سکتا ہوں نا. تو ہمارا یہ وستو کا جو سوروپ ہے ہمیں نہیں جانتے ہیں, اس لیے ہمیں ایسا ہوگا تو ویسے کیسے ہوگا, اپرنامی ہو تو پرنامی کیسے ہوگا, ایسا لگتا ہے ہم کو. کیونکہ اپرنامی اتنا بڑھیا آچاریوں نے جواب دیا ہے کہ اپرنامی اور پرنامی میں کون سا ورودھ ہے بتاؤ. تو ورودھ کو نے تین چار بھید گنائے, بد گھاتک ورودھ ہے نا, ایک کال میں ایک ساتھ رہنے کا ورودھ, سہ ادستان ورودھ نام ہے تمہارے, پڑھے تمہیں سردا سدھی میں ہوں گے, بد گھاتک ورودھ اور سہ ادستان ورودھ, کہ ایک دوسرے کا گھاتک ہوئے تو اسے ورودھ کہتے ہیں. تو پرنامی اپرنام کا گھات کرتی ہے کیا؟ اپرنامی پرنام کا گھات کرتا ہے کیا؟ تو بد گھاتک ورودھ نہیں ہے. دونوں آپس میں کہتے دیکھو یہ رہیں گے تو میں نہیں جاؤں گا, یہ رہیں گے تو میں نہیں, ایسا سہ ادستان ورودھ ہے. دھوپ ہوگی تو چھایا نہیں ہوگی اور چھایا ہوگی تو دھوپ نہیں ہوگی, یہ سہ ادستان ورودھ ہے. تو وہ بھی نہیں ہے پرنامی اور اپرنامی میں, تو کون سا ورودھ ہے؟ لاؤ کہتے ہیں تاریخ بتاؤ کون سا ورودھ ہے. ارے اس میں وہ رہ رہا ہے, وہ بہت پریم سے رہ رہا ہے, کوئی نے کسی کی کاٹ نہیں کری ہے, پرنامی پنے نے اپرنامی پنے کو رنجمات چھتی نہیں پہنچائی ہے, اپرنامی پنے نے پرنامی پنے پہ رنجمات بھی روک ٹوک نہیں لگائی ہے. کیوں؟ تو کوئی ورودھ ان میں تو دکھتا ہی نہیں ہے. تم کہتے ورودھ ہے ورودھ ہے ورودھ ہے ورودھ ہے, پھر اتنے خاص بار سے رہ رہے ہیں کیا؟ ورودھ تو اس کا نام ہے دونوں ایک ساتھ نہیں رہے, اب وستو کے سوروپ میں رہتے دکھائی دیتے ہیں, خیال میں ہے نا. سب کیا بات کہتے, پرکاش اور اندھکار ایک ساتھ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا, پانی ٹھنڈا اور گرم ایک ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, گھبرانا نہیں. پرکاش اور اندھکار, ابھی ایسا کرو کہ اپنے جو جتنی لٹو جٹلے ہیں نا اس میں اور 10 لٹو جلا دو تو پرکاش کچھ بڑھ جائے گا نا. اب بھی 10 لٹو بجا دو اور اتنے ہی رہن دو تو کچھ گھٹے گا کہ نہیں گھٹے گا؟ تو وہ گھٹا وہ اس کا نام تو اندھکار ہے. اب یہاں اسے 100 لٹو بجا دو تو پھر تو اندھکار ہو گیا نا. پھر بھی مجھے آپ کو پہچان رہا کہ سکھ سنجی صاحب, اندھکار ہوتا تو کیسے دکھتا؟ تب بھی پرکاش ہے کہ نہیں ہے؟ کل گھر میں اندھکار اور پرکاش دونوں ایک ساتھ کتنے آرام سے رہ رہے. اب تم کہتے ہو ورودھ ہے, ورودھ زبردستی ورودھی بنا رہے ہو. نہ پرکاش اور اندھکار میں ورودھ ہے, اور نہ میں نے دوسرا ادھارن کیا دیا تھا, گرم پانی اور ٹھنڈا پانی. اب ایک بالٹی میں رکھو گرم پانی, پھر ایک بالٹی میں بغل میں رکھو ٹھنڈا پانی, اور تیسری بالٹی میں رکھو اس سے بھی چوگنا گرم, اور وہ سینٹیگریڈ منسیبل آپ سمجھ لینا ڈگری. اب اس بالٹی میں ہاتھ ڈالو اس میں ڈالو تو یہ پانی گرم ہے کہ ٹھنڈا؟ اس ٹھنڈے کی اپیکشا گرم ہے. اور اس میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالو اس میں ڈالو تو یہ ٹھنڈا اور یہ گرم ہے, بولو ایک ساتھ اس میں ٹھنڈا بھی اور گرم بھی ہے. اس جیسا کھولتا گرم نہیں ہے اس لیے ٹھنڈا ہے, اس جیسا برف جیسا جم جائے ایسا ٹھنڈا نہیں ہے. بولیے, ارے ہم تو کتنے اچھے ابھیاسی ہیں, ختم کرتا ہوں ایک منٹ میں, گھبرانا نہیں. کل تو مجھے بھول ہی گیا کہ کتنے بجے شروع کیا تھا, آج میں نے یاد رکھا ہے, اور میں نے انتظام بھی کیا تھا, انا جی سے کہہ دیا تھا کہ بھائی میرے کو تم ٹوک جانا, مجھے کوئی ٹوکنے موکنے میں کوئی ڈر نہیں لگتا. کیا تو کیا کہہ رہا تھا بولو, کیا سمجھا رہا تھا ہمیں لاسٹ میں؟ وہ تو گرم نرم پانی سے نکل گیا, مطلب بے تو پرانی باتیں ہوگی. یہ لاسٹ میں جو میں بات کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رہنے میں کچھ بھی ورودھ نہیں ہے. وہ بہت پریم سے ایک ساتھ رہ رہی ہیں اور ہمیں ورودھ ہے ورودھ ہے ورودھ ہے ورودھ ہے. تو جب ایک ساتھ رہ سکتی ہیں دو چیزیں تو پھر اس کو ورودھ ہم کس بات کا مانیں. تو پرنمن اور اپرنامی پنا یہ دونوں وستوں ایک ساتھ درب میں رہتی ہیں, اتپاد ویہ اور درب پنا. اب یہ پرنمن ورودھی کا ہے, یہ دونوں ایک ساتھ وستو میں رہتے ہیں نا, اس لیے انہیں پرسپر ورودھ ہے ہی نہیں. تو ورودھ ہے نہیں پر دکھتا ہے. پتی پتنی لڑتے ہوئے دکھتے ہیں نا, لیکن لڑائی ہے تھوڑی. پتا ساز اٹھار سے رہ رہے ہیں, پریم سے ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں, بڑھیا ہے, کیا وغیرہ بڑھوں گی, کچھ نہیں. جھگڑا ہے انہیں کیا کیا جھگڑا ہے بولا. یہ جھگڑا ہوتا تو ایک ساتھ کیسے رہتے. اور تمہیں جھگڑا کا سروپ دیکھنا ہے نا تو میں بتاؤں تھوڑا. کوئی پتی پتنی لڑ رہے ہو, پتنی پتی سے مہا اسنتوش ویکت کر رہی ہو اور آپے سے باہر ہو گئی ہو, پھر بھی تم جا کر پتی کو ہاتھ لگا کے تو دیکھو, اس سے نہیں سی تم پہ نہ ٹوٹ پڑے تو میرا نام نہیں, کہ میں تو تیرے کو بچانے آیا دادا. تو ہمیں بچانے والا کون ہوتا ہے, ہمارے گھر میں ہم نپٹ لیں گے, تیرے سہیوگ کی ہمیں رنج مات آ سکتا نہیں ہے. اور تم یہ باتیں سن سن کے سمجھ گئے کہ یہ طرح سے درودھی ہے, کیا سمجھے نا. تو جب بکتے ہیں نا تو وہ اورودھ دکھائی نہیں دیتا, ورودھ دکھائی دیتا ہے, سمجھے نا. لیکن اورودھ روپ سے اندر میں ایکتو ممتو پڑا ہوا ہے بہت گہرائی سے, اس لیے دونوں باتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, ان میں کوئی پرسپر ورودھ نہیں ہے.